الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدق شفيعي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حديث مبارك اس ٹکڑے کا مطلب ہے کہ صدق میرا سفارشی ہے، صدق شفیعی. صدق کہتے ہیں کسی چیز کی اصل کو. قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، حدیث مبارک میں بھی ہوا. اور کسی چیز کا جو اصل ہے، یعنی کسی بات کا جو اصل ہے وہ سچ ہوتا ہے. تو اصل جو ہے وہ سچ ہے، حقیقت ہے، اور اس کو صدق کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. کیونکہ مومن نے شہادت دینی ہوتی ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ مومن اگر جھوٹ بولے گا تو اس کی شہادت بھی جھوٹی ہو جائے گی. اس کی شہادت کے سچے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مزاج سچ بولنے والا ہو. کیونکہ سب سچوں میں سب سے بڑا سچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جو کچھ کہا آج تک سچ رہا، قیامت تک سچ رہے گا. اسلام کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات جو زبان سے نکلی وہ سچی تھی. مومنین اس سچ کی وجہ سے وہ آگے گواہی دے دیتے ہیں، اور ان کی گواہی کو پھر آگے کفار نے قبول کرنا ہوتا ہے. وہ مومنین کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ اگر کچھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا نبی ہے، تو اس بات پر وہ بھی گواہی دے دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں شہادت. مسجد میں جو بندہ آتا ہے، آ کے کلمہ پڑھتا ہے، تو بیسیکلی آ کر کسی مسلمانوں کے سامنے ہی بیٹھ کر وہ یہ شہادت دیتا ہے کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے جو ہے پیغمبر ہیں. تو اب یہ بھی سچوں میں شامل ہو گیا کیونکہ اس نے ایک سچی گواہی دی. اب اس سچ بولنے کے بعد اس کو چاہیے کہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولے. اپنے اس قول کو قائم رکھنے کے لیے اس کو چاہیے کہ یہ باقی جھوٹ سے بھی پرہیز کرے، تاکہ اس کا یہ قول جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ اس کی گواہی دے سکے اس کے مسلمان ہونے کی، اور اس کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر. فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور بولتا چلا جاتا ہے، بار بار بولتا ہے جھوٹ، اللہ رب العزت اس بندے کو جھوٹے لوگوں میں لکھوا دیتا ہے. اب جھوٹ کی بدبو ہوتی ہے، فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں، ان کو اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ بہترین اخلاق انسانیت کو سکھا سکیں. یہ بہترین اخلاق ہم کسی اور نیشن سے بھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی اور قوم ہمیں اچھے اخلاق سکھا دے. جیسے کہ آج لوگ ایسا وہم کرتے ہیں کہ بھئی فلاں لوگ جو ہیں بڑے نیک ہوتے ہیں اور بڑے سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ان کا کاروبار بھی اچھا ہے، ان کا معاملہ اچھا ہے، ان کی ہر چیز بہت اچھی ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ مسلمانوں سے متاثر ہوتے تھے. آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اور آج ہم غیر مسلم اقوام سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنا और सच्चा मामला करना सिखाया है। सच बोलना और चीज है और सच्चा मामला करना मुख्तलिफ बात है। बाज़ औक़ात इंसान सच तो बोल रहा होता है लेकिन सच्चा मामला नहीं करता। मसलन आज के मीडिया को ही देख लें, जितनी फिल्में बन रही हैं, जितनी इसमें स्टोरियां चल रही हैं, सारी की सारी ये कहानी फर्ज की होती है, झूठी कहानी होती है और उसके बेस पर घंटों की मूवी बनी होती है और लोग उसको बैठकर बड़ी तवज्जो के साथ देख रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। इसी तरह वो लोग जो घंटों बैठ के खबरें देखते हैं और खबरों पे तबसरा भी करते हैं और आपस में बहस भी करते हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई बंदा भी एक कारोबार भी कर रहा हो तो वो अगर अपने कारोबारी टेक्निक्स को सबके सामने हर वक्त खोलता रहेगा तो साफ जाहिर है कि उसके लिए मसला होगा, तो अपना कारोबार चला ही नहीं सकेगा। कोई इंस्टीट्यूट जो है अगर उसकी खबरें 100% सारी की सारी बाहर चली जाए, कोई राज रहे ही ना, तो वो इंस्टीट्यूट कामयाबी से नहीं चल सकता क्योंकि उसके कंपटीटर्स होते हैं। मसलन एप्पल ने अगर कोई नया सेल फोन बनाना है तो वो पहले से जो इतला देंगे तो वो ऐसा नहीं दे देंगे कि जिसमें सारी बातें बता देंगे, इतना बताएंगे कि भाई आईफोन 5 आने वाला है, क्या फीचर होंगे ये भी बताएंगे, इंतजार करो भाई, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जब आएगा तो पता चलेगा। चल इसलिए पता चल जाएगा, अगर सारा कुछ पहले बता देंगे तो साफ जाहिर है कि जो दूसरे उनके कंपटीटर्स हैं वो भी अपना बना के सामने रख लेंगे। तो एक मुल्क चलाने के लिए वक्त का बादशाह अपने सारे प्रोग्राम कैसे बार बार रख सकता है, मुमकिन ही नहीं है। और खबर ऐसी आती है जैसे रोजाना सारे दिन की मामलात बादशाह के और तमाम जो मुल्क की इंतजाम की चीजें उन सब की बातें खबर वाला बता रहा है, हालांकि वो खबर झूठ होती है, उसमें अधूरी बात बताई होती है। हम बात करते हैं सच्चे अंदाज से लेकिन मामला सच्चे अंदाज से नहीं कर रहे होते। इसी तरह से आप ये देखें कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपने जो है क्रेडिट कार्ड का कॉन्ट्रैक्ट किया, के भी आपने साइन किया एप्लीकेशन को, लंबी सारी एप्लीकेशन लिखी होगी, बारीक बारीक अल्फाज में बंदे अक्सर साइन कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता हम क्या साइन कर रहे हैं, लिखा हुआ क्या है उसके अंदर। अब लिखा हुआ तो सब कुछ है उसमें, उन्होंने बोला तो सच है लेकिन सच्चाई वाला मामला नहीं किया। ऐसी शिप लिखी हुई है उसके अंदर कि हम जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं, सारी बात लिखकर एंड में सारी बात को डिनाई भी कर दिया। तो सच लिखा लेकिन सच्चाई का मामला नहीं किया। इसी तरह फूड इंग्रेडिएंट्स को अगर आप देखेंगे तो कहेंगे देखो कितने सच्चे लोग हैं, इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि इसके अंदर इस फूड के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो देखने में सच बोल रहे हैं लेकिन मामला सच्चाई वाला इसलिए नहीं है कि वो अचानक किसी वक्त भी उसके इंग्रेडिएंट्स बदल देते। एक आदमी ने आज तहकीक की है कि अभी फलां कुकीज जो है वो हलाल है, 6 महीने के बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली और उसके अंदर हराम दाखिल कर दिया। अब ये अगले 6 महीने ये कुकीज बनती रही, फिर उन्होंने अगले कुछ हफ्ते के बाद 3-4 महीने के लिए फिर अपने इंग्रेडिएंट्स में कुछ तब्दीली डाल दी और दोबारा हलाल बना दिया। अब एक बंदे ने अगर कॉल किया था 6 महीने पहले तो उन्होंने सच बोला कि इसके अंदर कोई भी हराम चीज नहीं है। बीच में 6 महीने का जो स्टॉक निकला वो सारे के अंदर हराम चीज मौजूद थी। खाने वाला ये समझेगा कि मैंने पूरी तहकीक की, ये हलाल है, लेकिन बीच का एक स्टॉक ऐसा निकला जिसमें लाखों की तादाद में उनका वो बॉक्स बना, मार्केट में डाल दिया गया और हो सकता है कि उसके बाद फिर अगले 6 महीने के लिए उन्होंने उसको बंद कर दिया। आप फिर कॉल करके पूछेंगे, लोगों ने रहम डाला कि भाई इसमें तो हराम है, आप फिर कॉल करके देखेंगे तो वो कहेंगे इसमें कोई हराम नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो चीज बन रही है वो उसके बारे में सच सच आपको बता रहे होंगे, लेकिन क्या उन्होंने मामला सच्चाई वाला किया? तो मामला तो सच्चाई वाला नहीं किया, उसमें तो झूठ बोला। लेकिन इस्लाम ने जो चीज सिखाई कि सच बोलना है और सच्चाई का मामला भी करना है। अस्सिद्कु युंजी वल्किज़्बु युहलिक, फरमाया सच निजात देता है और झूठ हलाक करके रख देता है। लोग क्या समझते हैं कि भाई हम झूठ बोलेंगे हमारी जान बच जाएगी, हालांकि जान बचेगी नहीं बल्कि आखिरत में ये जान फंस जाएगी। अभी तो आपने जान छुड़वा ली झूठ बोलकर, लेकिन आखिरत में तो आप अपने आप को फंसा बैठे ना। अच्छा, बोलने वाला झूठ जो है कब किसको याद रहता है? बंदे ने बात की खुद भी भूल जाता है कि मैंने क्या कहा था, और उसके नामा अमाल में ये गुनाह लिखा गया और बेलज्जत गुनाह लिखा गया कि इतना झूठ इसने बोल दिया जिंदगी में और इतने लोगों को धोखा दे दिया। अब क्यामत के दिन अगर ये लोग आएंगे और इससे इस झूठ बोलने के बदले में अगर मुतालबा करेंगे कि अपने नामा अमाल में से हमें अब दो न नेकियां अपनी, तुमने हमारे साथ धोखा दिया था, अब वहाँ भाई रुपया पैसे डालने से नहीं होगा ना, नामा अमाल में से देना पड़ेगा इस धोखे का जवाब, तो अब फंसेगा बहुत बुरी तरह। ये जो झूठ है इससे बचना बहुत ही मुश्किल काम है, और झूठ जो है मेरे भाई इंसान बोलता है जब उसका कोई ऐब सामने आ रहा हो, अपने ऐब को छुपाने के लिए इंसान झूठ बोल देता है। किसी ने कहा कि भाई आप में फला कमजोरी है, आपके बहन भाइयों में कोई कमजोरी है, मतलब बंदा माल पैसे में इतना नहीं है स्ट्रांग, उसके सामने कोई अमीर आदमी आ गया है, पैसे वाला आ गया है, अब ये घंटा दो घंटा झूठ बोलता रहेगा अपने आप को पैसे वाला जाहिर करने के लिए कि हम भी खाते पीते घर के हैं, भूखे नंगे नहीं है, तो लिहाजा बिना वजह। अच्छा, क्या वो जो पैसे वाला तुम्हारे सामने बैठा है क्या दुनिया में सबसे अमीर आदमी है या उससे भी ऊपर अमीर आदमी होंगे, उससे भी ऊपर के लोग होंगे, लेकिन इस बंदे ने घंटा दो घंटा उसके सामने कितना झूठ बोला। अच्छा, इसी तरह किसी वक्त अगर इंसान को अपनी जिल्लत का अंदेशा हो कि भाई अगर मैं मेरी हकीकत पता चल गई तो मैं लोगों में जलील होऊंगा। अब देखो हर बंदे में हर क्वालिटी तो नहीं होती ना, ऐसा तो नहीं है कि सारे खूबसूरत हैं, सारे ही जो है पढ़े लिखे हैं, सारे ही बहुत समझदार हैं, तो भाई कहीं ना कहीं कोई ना कमी तो इंसान में होती है ना। तो अपनी कमी पर अल्लाह से राजी हो जाना कि भाई मेरे पास अगर फला चीज नहीं है तो क्या हो गया, जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तो अल्लाह का दिया हुआ बड़ा एहसान है। तो इस जिल्लत के डर की वजह से इंसान अगर झूठ बोलता रहेगा तो ये भी बिला वजह की है, और इससे क्या लोग इसकी इज्जत करने लग जाएंगे, वो ये समझता है कि भाई मुझे फिर लोग अच्छे निगाहों से देखेंगे। हाँ, हालांकि जब लोगों को पता चलेगा वो और भी ज्यादा उसको जलील और रुसवा करेंगे। इसी तरह इंसान बाज़ औक़ात अपनी किसी गलती के पकड़े जाने की वजह से झूठ बोल देता है, गलती तो कर बैठे, अब एक गलती की उसके लिए 100 झूठ और बोल दिए। गलती करना एक गुनाह था और झूठ बोलना और गुनाह था। नुकसान होने का खतरा इस पर झुका के नहीं बैठे, मुराकबे करने का टाइम नहीं है, अब मुराकबे का टाइम नहीं, इंशाल्लाह देंगे मुराकबे का टाइम, सब झुका के नहीं बैठे, होशियार होकर बैठे। इस वक्त जो बयान किया जा रहा है इसको सुनना, ये शेख का अदब होता है, क्योंकि शेख कुरान हदीस पढ़ना होता है और उसका बयान सुनना यही शेख का अदब है। कई दफा मैं ये बात समझा चुका हूँ, जो बाकी चीजें होती है वो जो है शेख से मोहब्बत होती है, और अदब क्या होता है शेख का, कि शेख बयान कर रहा है, एक चीज समझा बता रहा है, उसको तवज्जो के साथ सुनना इस नियत से कि मैंने अमल करना है। इससे मुरादबा करेंगे तो अमल की तौफीक भी मिलेगी। ये शैतान की तरफ से थक्की दी जा रही है सुनाने के लिए, ताकि तुम्हारा अभी सो जाओ, जब जैसे बयान खत्म होगा आप जाग जाएंगे, कमाल हो जाएगा, तो 2 घंटे आगे नींद नहीं आएगी, होशियार होकर बैठे। इसी तरह नुकसान होने का खतरा बाज औकात माल पैसे का, ग्राहक आया है अब आपके पास एक कस्टमर और बंदा झूठ बोल देता है ताकि मेरा सौदा बिक जाए और जो है मुझे नुकसान ना हो, कुछ चीज बेचनी है उसमें डिफेक्ट है, तो आप झूठ बोल दिया। जैसे लोग गाड़ी वाड़ी सेल करते हैं, कहते हैं जी हमारी गाड़ी में डिफेक्ट आ गया, चलो इसको निकालो, अच्छी गाड़ी ले लेते हैं। अब उसके डिफेक्ट नहीं बताएंगे दूसरों को, इसमें क्या डिफेक्ट है, छुपा लेंगे, क्योंकि पैसे का नुकसान होने का डर होता है। तो नुकसान होने का खतरा हो तब दूसरा झूठ बोल देता है। तो असल में अगर बंदा मेहनत करे और आम जिंदगी में झूठ ना बोले, तो फिर उसको प्रैक्टिस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलने की आदत हो जाती है और फिर बेअख्तियार झूठ नहीं निकलता। आज अजीब बात हुई, एक दवाई लेने के लिए एक फार्मेसी में मिल गया। अब ओवर द काउंटर मेडिसिन है, जब वहां पहुंचे पैसे देने के लिए तो उसने कहा कि हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ जो है भाई ओवर द काउंटर मेडिसिन के लिए क्यों चाहिए, नाम चाहिए कुछ नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए क्यों चाहिए भाई, कोल्ड मेडिसिन है जिसमें जीसी हो पहली दफा सुना। अच्छा अब झूठ बोल के कोई और डेट ऑफ बर्थ बता दी जाए तो कौन से तहकीक करेंगे, उसने कौन से कहा कि अभी आप अपना सबूत भी दिखाएं, डेट ऑफ बर्थ उसने कंप्यूटर में एंटर कर देनी है और जो है दवाई ले लेनी है। अब झूठ बोल के दवाई लेना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन दिल में ख्याल आया कि क्यों झूठ बोले, बेहतर है कि दवाई ना ली जाए। उनसे कहा कि भाई हम आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं देना चाहते और साथ ही साथ दवाई भी नहीं देते, आपकी पॉलिसी अगर ये है तो हम चीज खरीदते नहीं है। तो इंसान बाज औकात इरादे से झूठ बोलता है और बाज औकात बगैर इरादे के भी झूठ बोलता है। मिसाल के तौर पर कोई फोन आया आपका और बीच में एक और रिंग आ गई, अब बंदा कहता है कि अच्छा मैं आपको एक सेकंड में कॉल बैक करता हूँ। अब आप बताएं एक सेकंड में कैसे वो कॉल बैक करेगा, ये ऐसे सेंटेंस बोले जा रहे होते हैं जो कि झूठ पर होते हैं और इसका गुनाह भी लिखा गया और ये हैबिट होती है और बगैर इरादे के ये झूठ होता है कि मैं आपको एक सेकंड में कॉल बैक करता हूँ। अच्छा किसी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, कहते मैं बस आ रहा हूँ। आप आ नहीं रहे, आप जा रहे हैं, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं गलत दे रहे हैं और ये बगैर इरादे की झूठ बोलने वाली बात है, इससे इंसान को बचना चाहिए। اچھا اسی طرح مومنین کہتے ہیں انی وجحت وجهی للذی فطر السماوات والارض. اب یہ فکرہ مومن کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں دنیا پہ فرشتہ نہیں ہوتا, اور مومن اگر دنیا پہ فرشتہ ہو جائے تو اس گواہی کے خلاف عمل کر رہا ہے. ہم نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں ایاک نعبد, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اور اللہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نفس کی پرستش نہ کرنا. ایاک نعبد نماز میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں, اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نفس پرستی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی نفس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. تو اب بتائیں رہا کچھ جا رہا ہے نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے خطاب کرتے ہوئے, اللہ کا پجاری کہہ رہا ہے ایاک نعبد, اور جو ہے وہ اگر نفس کی بات کو مانے گا اور جو ہے تو پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات کے خلاف عمل کرے گا. اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام ہم کرتے ہیں تو اپنی نیت کے بارے میں توجہ رکھنی چاہیے, کیونکہ انسان ارادہ کیا اس نے کہ میں نے اس کام کو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اور کرتے کرتے اس نے نیت کو بدل دیا, اللہ کے بجائے اپنے نفس کے لیے کرنا شروع کر دیا. مسجد کے کام کر رہا ہے للہ کر رہا ہے, کرتے کرتے کہیں پر آ کے اس کی نیت بدل گئی. نیکی کرتے ہوئے شیطان اس کی نیت کو تبدیل کر دیتا ہے, وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہوتا, حالانکہ اس کام کو جب شروع کرتا ہے اس وقت وہ اس لیے سے کرتا ہے کہ میں اس کام کو اللہ کے لیے کروں گا, اور کہتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے, لیکن اللہ کی رضا کی بجائے اپنے نفس کے لیے اس کو تبدیل کر دیتا ہے اس کام کو. یا دنیا میں شہرت حاصل کرنا, یا کوئی مال کا فائدہ اٹھانا, تو اب اس نے اپنی نیت کو بدل دیا, یہ جھوٹ ہو گیا, یہ صدق نہیں رہا, یہ سچ نہیں, یہ جھوٹ ہو گیا. اللہ محفوظ کرے ہم سب کو. تو اپنے ظاہر اور باطن دونوں پر نگاہ رکھنی پڑے گی تاکہ انسان سچا رہے. انسان مکلف ہے, پوچھا جائے گا, جبکہ جانور غیر مکلف ہیں, ان سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی. لیکن عجیب بات, ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جانور بھی سچ بولتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے, اور بڑا عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں, آپ حیران ہو جائیں گے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک چیوٹی اپنے بیل سے نکلتی ہے, اپنے گھر سے باہر آتی ہے, اس کو کچھ کھانے پینے کی چیز نظر آ جاتی ہے. وہ کوشش کرتی ہے کہ میں اس کو کسی طرح اپنے دل میں واپس لے جاؤں, جہاں وہ ہونے پہ رہتی ہے. اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اٹھا نہیں سکتی. ایک آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا اس چیز کو دیکھنے لگتا ہے کہ یہ چوٹی کیسے اس کو اٹھا رہی ہے, متوجہ ہوتا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چوٹی اس کھانے کو چھوڑ کر اپنے دل میں واپس جاتی ہے, اور چوٹیوں کو وہ لے کر واپس آتی ہے. جب وہ واپس آتی ہے تو اس بندے نے اس دوران اس کھانے کی چیز کو اٹھا لیا. اب جب اٹھا لیا وہ چوٹی گئی, اور اس نے دوسری چوٹیوں کو لے کر جب آئی تو وہاں پر وہ کھانے کی چیز نہیں تھی. تھوڑی دیر وہ دوسری چوٹیاں وہاں پر پھرتی رہی, اور پھرنے کے بعد وہ تو چلی گئی لیکن یہ نہیں گئی. یہ مسلسل تلاش کرتی رہی کہ وہ چیز کہاں گئی, یہاں پر تھی. اچھا جب دوسری چوٹیاں چلی گئی تو اس نے اس کھانے کی چیز کو دوبارہ وہاں رکھ دیا. اب اس چوٹی نے پھر زور لگایا کہ اس کو کھا کے لے جائے. تھوڑی دیر زور لگانے کے بعد یہ چوٹی تھک گئی, اور اس نے اس کو چھوڑ کے دوبارہ واپس بل میں گئی اور چونٹیوں کو بلانے کے لیے, اور اس بندے نے اس کھانے کی چیز کو دوبارہ اٹھا لیا. جب اور چونٹیاں آئیں انہوں نے آ کر دوبارہ تلاش کیا, اور وہ کھانے کی چیز وہاں پر نہ ملی, وہ چلی گئی, और ये अकेली चूची दोबारा तलाश में लग गई, इसने फिर खाने की वहां रख दी। अब दो तीन दफा ऐसा हुआ कि वो हर दफा चूची जाती थी और जाकर दूसरी चूचियों को भगा के लाती थी, और जो है जब वो आती थी तो वहां खाने की चीज नहीं होती थी। तो आखिरी मरतबा उन चूंटियों ने इस चूंटी को घेर लिया और इस पे अटैक किया और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर जब इस बंदे ने इस बात को देखा कि इन चूंटियों ने उस इतला देने वाली चूंटी को कत्ल कर दिया, तो वो हैरान हुआ और अपने उस्ताद के पास गया और उसने जाकर उसको सारा हाल सुनाया और उन्होंने बताया कि चूंटियां जो हैं ये भी सच बोलती हैं। जब दो तीन मरतबा उसके झूठे होने का जो है सबूत मिल गया कि इसने झूठ बोला है, तो उन्होंने उसकी सजा में उसको कत्ल कर दिया। जानवरों में भी आप अंदाजा करें कि झूठ बोलने की सजा जानवर भी देते हैं कि गलत इतला क्यों दी गई है। अल्लाह ताला सच बोलने वालों को बहुत इनाम अदा करते हैं। उनमें से एक इनाम यह है कि परवरदिगार उनकी निकली हुई दुआओं को रद्द नहीं करते। जिस जुबान से बंदा सच बोलता है और जिस पेट में वो हलाल हमेशा डालता है, तो ऐसा बंदा जो है अल्लाह ताला उसको अपने मुकर्रबीन में लिखता है और जो है उसकी मांगी हुई दुआएं फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत रिजेक्ट नहीं करता। सालिकीन के लिए ये चीज बहुत ही अहम है कि वो सच बोले और हलाल खाना खाए। इसी तरह आजकल जो शैतान है उसने झूठ की नफरत को खत्म कर दिया है, और झूठ की नफरत खत्म करने के लिए जो उसने वंडरफुल काम किया कि उसने झूठ के नाम की जगह बहाना एक नाम बना लिया, नाम ही बदल दिया। बीवी खावत के सामने कहती है मैंने तो बहाना किया है। अब खावत ने पूछा भाई आज दिन कैसे गुजरा? ये बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, काफी मसरूफ रही मैं, आपकी अम्मी की भी कॉल आई, आपकी बहन की भी कॉल आई, सारी कॉलें बताएगी। ये नहीं बताएगी कि मेरी अम्मी ने भी कॉल की थी, मेरी बहन ने भी कॉल की थी, उनके साथ चाहे घंटा बातें करती रही लेकिन मजाले में वो बता जाए। तो अब कोई पूछे कि भाई तुम ये झूठ क्यों बोल रही हो, तो कहेगी मैंने बहाना किया है। ये नहीं कहेगी मैंने झूठ बोला है, मैंने बस बहाना कर लिया। किसकी कॉल आई थी, क्या हुआ, ऐसी हार को काल आई थी, कुछ ऐसे और बात शुरू कर दी कि भाई ताकि ये ना पता लगे कि घंटा भर में अम्मी से बात करती रही। हालांकि ये कोई जुर्म तो नहीं है, अम्मी से बात करना कौन सी बुरी बात है, बहन की काल आ गई जैसे क्या हो जाएगा, वो आखिर शादी के बाद कोई रिश्ते टूट थोड़ी जाते हैं, वो रिश्ते चलते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आदत पड़ी हुई है और शैतान ने ये बात दिल में बिठा दी कि जो है बस बहाना कर रही हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, तो बिना वजह का झूठ बोलकर अब जो है इसके नाम अमाल जो है वो क्या हो रहा है। हाँ, वो दीदी के सामने झूठ बोलता है, जो आपसे देर से आ रहा है, दीदी पूछेगी कि भी कहाँ वक्त गुजार के आए, क्यों देर से आए हो, ये नहीं बताएगा मैं दोस्तों में बैठ गया था, गपशप चल रही थी और बीवी जो है मोहब्बत की मारी हुई खाने के इंतजार में बैठी हुई है कि आएगा इकट्ठे खाना खाएंगे, तो बहाना बनाएगा, झूठ नहीं बोलेगा बहाना बनाएगा, ऐसे बहाना ऐसे स्टाइल देगा कि जैसे मैं जाप पे बड़ा थका थका था आ रहा हूँ। तो बीवी समझेगी हाँ बड़े बिजी होंगे जाप पर थे, काम कर रहे थे, लगता है ओवर टाइम करके आ रहे हैं, हालांकि ओवर टाइम करके आ रहे हैं तो होंगे वक्त जाया करने वाले, लेकिन बीवी के सामने इम्प्रेशन ऐसे देंगे ये क्या बहाना कर लिया। بہانہ ہے یہ. کسی طرح بیٹا بہانہ کام لیتا ہے کسی جیسے ہوم ورک بہت ہے, حالانکہ ہوم ورک نہیں ہوتا. اسکول میں جو پڑھنے کے لیے بدل جاتا ہے وہاں پر کوئی یہ تھوڑی ہے کہ اسکول کے ٹیچر نے سارا کام اس کو لگا دیا کہ شام کو بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے کرنا. کئی بچے ہوتے ہیں دن سارا دن اسکول کے بعد آ کے رات تک بیٹھے ہوتے ہیں کام کر رہے ہیں. ماں باپ بھی بڑے خوش کہ میرا بیٹا بہت پڑھتا ہے. پڑھتا وڑھتا کوئی نہیں ہوتا, وہ انٹرنیٹ میں بیٹھا ہوا تماشے دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن ماں باپ کو امپریشن دے دیا ہوتا ہے کہ جی بیٹا بہت محنتی ہے, بڑا پڑھ رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ بہانہ. بہانہ کر دیا کہ میں ہوم ورک کر رہا ہوں, حالانکہ ایک ونڈو ایک اور ہوتی ہے جو منیمم کر کے رکھی ہوتی ہے. ذرا لوگ ادھر ادھر گئے, اس نے وہ ونڈو کھول لی. یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے؟ بہانہ. بیٹی ماں کے ساتھ بہانہ کر رہی ہوتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹی مجھے گھر کے کاموں کے لیے ہیلپ چاہیے. بیٹی جو ہے آگے سے بہانہ کیا کرے گی, میں تو پہلے سے بہت ٹائرڈ ہوں, آج تو میں بڑی بیزی رہی, بڑے کام کرتی رہی, اب ایسی تھکی تھکی تھی, میرے کمر میں درد, سر میں درد, مجھے فلاں تکلیف ہے. تو ایسے اپنی سکنس کا بہانہ. یہ سب بہانہ نہیں ہوتا, یہ جھوٹ ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح دوست اور رشتے دار ایک دوسرے کے ساتھ بہانہ کر رہے ہوتے ہیں. اب کوئی ملنے کے لیے دوست آنا چاہتا ہے اور یہ بہانہ کر دیں گے, میں تو آج میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, کسی نے کوئی ہیلپ مانگ لی کہ ذرا آپ فلاں کام میں ذرا ہماری ہیلپ کر دیں. تو آگے سے جواب ملے گا بھائی وہ تو میری گاڑی خراب ہے, میں کیسے آ سکتا ہوں, تو فلاں کر ایسے ایسے کوئی بات کر دیں گے کہ جی وہ تو فلاں چیز خراب ہو گئی ہے, فلاں یہ ہو گیا ہے. تو اب دل میں کیا سوچیں گے؟ ہم نے بہانہ کیا ہے. حالانکہ یہ بہانہ نہیں ہوتا, یہ جھوٹ ہوتا ہے. اور یہ انسان بولتے رہتے ہیں اور اپنے نام اعمال میں لکھواتے چلے جاتے ہیں. اگر انسان سچ بولنے کا ارادہ کر لے, اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں. ایک وکیل صاحب تھے ہمارے حضرت جی کے جاننے والے تھے, بھی اس کی ڈاکٹر تھی, وکیل صاحب سیاست میں بھی لگے ہوئے تھے. ایک تو وکیل اوپر سے سیاست, اللہ معاف کرے. تو ایک وقت میں دو بڑی چانس جھوٹ بولنے کے اور گناہ کرنے کے. تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ 50,000 مہینے کا کماتا تھا پاکستان میں. جس زمانے میں ایک انجینئر کی تنخواہ 2-3,000 ہوتی تھی, اس زمانے میں اس کی 50,000 تنخواہ بہت بڑی تنخواہ تھی. اب اس کی اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو گیا, انہوں نے جھوٹ بولنے سے منع کیا کہ جھوٹ نہیں بولتے, جیسے آج ہم بیان کر رہے ہیں. ایسے اس نے کوئی بیان سنا ہوگا, جب اس نے سنا کہ بھائی جھوٹ تو نہیں بولتے, سچی زندگی گزارتے ہیں, رزق حلال کماتے ہیں, تو اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں بھی سچی زندگی گزاروں گا. گھر آیا, بیوی سے اسے ذکر کیا کہ دیکھو وکیل ہونے کے حساب سے اور سیاست کے اندر پڑھنے سے اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے, میں نے بس ارادہ کر لیا کہ اب میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اب بیوی سمجھ گئی کہ جب سچ بولے گا تو صاف ظاہر ہے کہ بھائی نہ کوئی مقدمہ ہوگا, نہ کوئی کاروبار ہوگا, نہ کوئی پیسہ آئے گا. لیکن وہ بھی کوئی اللہ والی تھی, اس نے دل میں سوچ لیا کہ جو کچھ بھی ہوگا تو ہم زندگی گزار ہی لیں گے. اب بیوی کیونکہ ڈاکٹر تھی, تو اس نے اس کو تسلی دی کہ دیکھو میں بھی اچھا کما لیتی ہوں, بہت زیادہ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے لا پریکٹس چھوڑ دیں گے, بس یہی ہوگا. کیونکہ لا کی پریکٹس کرنے کے لیے تو جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے نا. تو بیوی بھی سمجھتی تھی کہ بھائی اب کیا کریں گے, پھر یہی ہوگا کہ تم اور کام کرنا. और ये ला वाला तो काम नहीं कर सकते। तो उसने कहा भी मेरी आमदनी भी इतनी है, गुजारा चल ही जाएगा, घर चल जाएगा इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें, आपने जब नेकी का इरादा कर लिया तो आप ठीक है, अगर जात छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें। उसने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि मैं जात छोड़ दूं, मैंने लॉ प्रैक्टिस, मतलब मैं अटर्नी बना हूं तो मैं लॉ प्रैक्टिस तो करूंगा, छोड़ता तो नहीं हूं मैं इसको। तो उसने कहा अच्छा ठीक है भैया, मसला हमारी किस्मत अच्छी करेगा, आपने जब इरादा कर लिया तो आप सच बोले और सच पे रहे। अब ये अपने चैम्बर में गया, वापस जहां प्रैक्टिस करता होगा वहां जाके उसने लोगों में ऐलान कर दिया कि भाई आज के बाद मैंने हमेशा सच बोलना है और सच्चे मुकदमे लेने हैं और झूठ के साथ मैंने जिंदगी नहीं गुजारनी। जो इसके बाकी कुलीग्स थे वो सारे हंसने लग गए, कहने लगे कि भाई क्या अजीब बात की है तुमने, तुम कैसे जो है ला प्रैक्टिस कर सकते हो अगर हमेशा सच बोलोगे। उन्होंने कहा मैंने तो ये बात का फैसला कर लिया, अब क्या होता कि कोई मुकदमा इसके पास आता, ये उससे बातचीत करता, पूरा फाइंड आउट करता कि तुम सच्चे हो इस मुकदमे में या झूठे हो, और साथ ही साथ ही उस बंदे को ये भी कह देता कि देखो अगर किसी वक्त मुझे पता चल गया कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं, तो मैं आपका मुकदमा छोड़ दूंगा, आपको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। जब वो बंदे इसकी बातें सुनते कि भाई ये तो बिल्कुल ही सच्चा बंदा है कोई, तो वो कहते अच्छा हम आपको सोच के बताएंगे कि हमने आपको मुकदमा देना है या नहीं देना, तो फिर जब वो जाते हैं तो हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये बैठा रहता इंतजार करता कि कोई और आएगा मेरे पास। तो इस तरह से एक साल गुजर गया। अब दूसरे वकील इस पे हंसते गुजरते हुए जोक्स करते, तो कहता यार लगता है तो पागल हो गया है, अच्छा खासा इसकी जो है ला प्रैक्टिस थी, लोग इसके पास आते थे, पता नहीं किसी मौलाना साहब से मिला है अल्लाह वाले से, पता नहीं क्या उसने पट्टी पढ़ा दी इसको, क्या बात सिखा दी है, इसका दिमाग खराब कर दिया है, और जो है ये कोई मुकदमा इसको देता ही नहीं है, और कौन दे सकता है कि जब ये इतना सच बोलेगा। लोगों ने वकील के पास जाना ही इसीलिए होता है कि वो कोई चक्कर चक्कर चलाएगा और काम करवा देगा। खैर साल भर गुजर गया और ये भी पक्का, इसकी बीवी भी मदद कर रही है कि अल्लाह पे भरोसा किए बैठे हैं कि जब हमने सच का फैसला कर लिया तो हम सच्ची जिंदगी गुजारे के। इस दौरान एक बंदा जो नेक था, क्योंकि अल्लाह वालों के साथ उसका भी ताल्लुक था, तो वो इसके पास आया और उसने कहा कि जनाब हम चाहते हैं कि आप जो है हमारा मुकदमा ले लें। तो इसे भी उससे वही सारी बातें की, उसने कहा जी बिल्कुल सही है, हम तो बिल्कुल सच पर हैं, हमें तो चाहिए। अच्छा अब ये वकील जो है जजों में भी मशहूर हो चुका था कि यार इसका दिमाग शमाग कुछ खराब हो गया, ये क्या हो गया, ये बहुत ही सच बोलने लग गया है और इसका कोई मुकदमा ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है और इसको कोई केस नहीं मिलता। खैर जब इसको ये केस मिला और ये अपना केस लेकर कोर्ट में गया, तो वहां पर जज देखकर इसको हैरान हुआ कि भाई ये कैसे आ गया, ये तो कहता था मैं हमेशा सच वाला मुकदमा लेकर आऊंगा, तो अब ये कहां से आ गया, इसको किसने केस दे दिया। खैर जब जज ने इसका केस सुना और थोड़ी तहकीक की तो उसको अंदाजा हुआ कि ये बंदा तो सच्चा है, और वकील जो है उसने भी साल भर से कहा हुआ था मैं सच वाला मुकदमा करूंगा। तो जज ने फिर तसल्ली करते हुए जल्दी से उसके हक में फैसला कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि वकील अच्छा खासा पहले से काम कर चुका है और सच ही लेकर आया है, उसने इस बात का अहद किया हुआ है। तो जज ने भी अपना टाइम सेव करते हुए जल्दी से थोड़ी तहकीकात की और तसली की और उसके हक में फैसला कर दिया। अब जो नेक लोग थे उनको इस बात की इतला हुई कि भाई ये तो अगर सच्चा केस होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जल्दी हो जाएगा और ये सच्चा केस ही मिलता है, तो लोगों में बात मशहूर होने लगी। अब हर सच्चा बंदा बेधड़क उसके पास आने लगा कि भाई हमारा केस जो है उसको यही अटर्नी डील करेगा। लोग अब ये जो जिस केस को ले जाता, अल्लाह की शान जज थोड़ी तहकीक करते और इसके जो है सच्चे होने का उनको यकीन होता था, तो वो आराम से फैसले इसके हक में होने लग गए। जिस केस को ले जाता जीत जाता, जिस केस को ले जाता जीत जाता, और ये खूब फटक करके केस ले जाता था। जब ऐसा कुछ अच्छा होता रहा तो इसके पास खूब रश लग गया। पहले अगर 50,000 महीने में कमाता था, अब ये उस जमाने में 1,00,000 महीने में कमाने लग गया। अब सब लोगों में भी इसकी बात मशहूर होने लग गई, लोग भी कहने लगे कि वाह भी वाह, देखो सच बोलता था, अल्लाह ने सच की वजह से इसको इज्जत दे दी, इसको इसको माल भी दे दिया इसका, और ये झूठ भी नहीं बोल रहा, और इसका खूब मुकदमा भी चल रहा है, और इसका हर चीज हो रही है। अल्लाह की शान कुछ अर्सा गुजरा, अब हुकूमत ने नए जज भर्ती करने थे और लिस्ट बनी कि भी किसको जज बनाया जाए, तो उनमें इसका नाम सबसे पहले आ गया कि ये आनेस आदमी है। जब ये खुद सच पे रहता है और इसने इतनी कड़वी गोली खाई, तो ऐसे ही बंदे को अगर जज बनाएंगे तो वो सच्चे फैसले करेगा। तो एक वक्त आया कि हुकूमत ने इसको ऑफर कर दी और वकील से इसको जज बना दिया गया। एक वक्त था कि ये कोर्ट में जाके खड़ा होता था, झूठ बोलता था और जज के सामने यस सर करता था। जब इसे सच बोलना शुरू किया, अल्लाह ने इसको जो है जज बनाया, काजी की जो है कुर्सी पे बिठाया, फर्श पे उठाकर अल्लाह ने इज्जत वाले मकाम पे पहुंचा दिया, और इसके पास आने वाले लोग अब इसको यस्सर यस्सर करने लगे। ये होता है फायदा सच बोलने का। इस दुनिया में अगर हम सच्ची जिंदगी गुजारेंगे, आखिरत में भी इज्जत के साथ खड़े होंगे। हम मुसलमान हैं, हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि साफ सुथरी सच्ची जिंदगी हो, जिसको कुफार भी अगर देखें तो वो जो है इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हों और दीन के हक को कबूल करना उनके लिए आसान हो जाए। खास तौर पर हम इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ बहुत सारे कुफार कुरान मजीद की जो है स्टडी करते हैं, इस्लाम की स्टडी करते हैं, और खास तौर पर वो लोग जो इस्लामी जिंदगी गुजारते हैं, जिनकी शक्ल शुबात मुसलमानों वाली होती है, यानी पर्दे करने वाली औरतें और दाढ़ी रखने वाले मर्द, तो जब इस्लामिक स्टडी कर लेते हैं लोग, तो फिर वो ऐसे मुसलमानों की स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं कि जॉब कैसे करते हैं, क्या उसमें ये ऑनेस्ट है, बीइंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इनका क्या बिहेवियर है। जब वो उन चीजों को देखते हैं तो उसके बेस पर वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस सच्चे डील में दाखिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके दिल में दीन की सच्चाई तो आ जाए, मगर हमें देखकर वो दीन में दाखिल ना हो, कि अगर इस दीन पे अमल करने वाले झूठे हैं तो हम इस झूठों के ग्रोह में कैसे शामिल हो जाएं। तो ऐसा ना हो कि कहीं हम ही नए लोगों के लिए रुकावट बन जाएं और आखिरत में वो हमारा गरेबान पकड़े कि ये कैसे तुम मुसलमान थे कि तुम्हें तुम्हारी वजह से हम दीन में दाखिल ना हो सके और आज जहन्नम में दाखिल होने वालों में शुमार हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपने सच्चे दीन की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और सच बोलना और सच्चा मामला करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो शुक्र अल्लाहुम्मा सल्ली अला سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.